एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, वैक्लाव स्मिल की एनर्जी एंड सिविलाइजेशन अ हिस्ट्री।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं करती, ये तो हमारे आज और आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है।
सही कहा, ऊर्जा यानी एनर्जी, ये शब्द हम कितना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि हमारी पूरी सभ्यता की कहानी असल में इसी ऊर्जा की कहानी है?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आजकल देखे, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब मुद्दे कितने अहम हैं।
और स्मिल की ये किताब हमें बताती है कि इन सब को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ऊर्जा ने हमें, मानव समाज को यहाँ तक कैसे पहुँचाया है।
एक तरह से ये हमारी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना?
बिल्कुल, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही नहीं समझेंगे तो भविष्य को बेहतर कैसे बना पाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं लेखक से, वैक्लाव स्मिल। ये नाम शायद बहुत आम ना हो, पर इनका काम बहुत खास है। कौन है ये, थोड़ा बताइए इनके बारे में।
हाँ, वैक्लाव स्मिल वो मैनिटोबा विश्वविद्यालय कनाडा में प्रोफेसर एमेरिटस है, चेक कनाडाई मूल के हैं और वैज्ञानिक और पॉलिसी एनालिस्ट दोनों हैं।
और उन्हें अक्सर पॉलीमैथ यानी बहुज्ञ कहा जाता है।
और ये बिल्कुल सही है, उनका काम देखिए, ऊर्जा, पर्यावरण, जनसंख्या, खाना, तकनीक का इतिहास, कितने सारे अलग अलग फील्ड्स को वो जोड़ते हैं।
और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनका नजरिया दूसरों से अलग कैसे है?
उनकी खासियत है उनका कठोर डेटा आधारित नजरिया। वो किसी आइडियोलॉजी या क्या कहते हैं हवा हवाई बातों में नहीं पड़ते,
सिर्फ तथ्य और आंकड़े।
हाँ बिल्कुल, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इतिहास, अर्थशास्त्र, सबको मिलाकर देखते हैं। दुनिया को वो जूल, वॉट, टन में नापते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया असल में कैसे काम करती है।
इसीलिए बिल गेट्स जैसे लोग भी उनकी इतनी तारीफ करते हैं।
हाँ, क्योंकि वो बिना लाग लपेट के सच्चाई सामने रखते हैं, और ऊर्जा और सभ्यता जैसे विशाल विषय पर लिखने के लिए उनसे बेहतर शायद ही कोई हो।
तो अब आते हैं किताब पर, एनर्जी एंड सिविलाइजेशन। इसका मूल आइडिया क्या है, एक लाइन में अगर समझना हो?
स्मिल का तर्क बहुत बोल्ड है और सीधा भी। वो कहते हैं कि ऊर्जा ही वो अकेली यूनिवर्सल करेंसी है जिसने पूरी मानव सभ्यता को चलाया है और आकार दिया है।
अरे वाह, इतिहास को राजा रानी या लड़ाइयों के बजाय ऊर्जा के चश्मे से देखना।
हाँ, सोचिए, शिकारी संग्राहक से लेकर आज के डिजिटल युग तक हमारी सारी तरक्की असल में ऊर्जा को बेहतर तरीके से पाने और इस्तेमाल करने की कहानी है।
तो ये किताब यही दिखाती है कि कैसे हर बड़ा सामाजिक बदलाव, हर नई टेक्नोलॉजी, जनसंख्या का बढ़ना,
बिल्कुल, या जीवन स्तर में सुधार, इन सब के पीछे ऊर्जा के स्रोतों में या उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों में, जिन्हें स्मिल प्राइम मूवर्स कहते हैं, कोई ना कोई बदलाव जरूर रहा है।
तो ये पारंपरिक इतिहास नहीं हुआ फिर?
नहीं, ये एक तरह का बायोफिजिकल इतिहास है। ये बताता है कि प्रकृति के नियम, खासकर ऊर्जा के नियम, हमारी कहानी को कैसे दिशा देते हैं और सीमाएं भी तय करते हैं।
और स्मिल ये भी कहते हैं कि हम अक्सर ऊर्जा की इस बुनियादी भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना?
हाँ, और शायद यही हमारी बड़ी भूल है। हम ऊर्जा को बस एक और चीज समझ लेते हैं, जबकि वो हर चीज की बुनियाद है।
और ये अज्ञानता फिर हमें भविष्य के लिए गलत उम्मीदें दे सकती है।
बिल्कुल, तो चलिए इस ऊर्जा की कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। स्मिल इतिहास को ऊर्जा के नजरिए से कई युगों में देखते हैं। पहला युग है प्रागेतिहास और पारंपरिक खेती का। इसे वो बायोमास पर आधारित सौर अर्थव्यवस्था कहते हैं। सुनने में थोड़ा भारी है, पर
सीधा है शायद, कि हजारों साल तक इंसान सिर्फ उतनी ऊर्जा पर जी रहा था जो सूरज से पौधों में आई।
हाँ बिल्कुल, और जिसे वो अपनी या जानवरों की मांसपेशियों से काम में बदल सकता था।
सोचिए, हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक रोज के बस 2000-3000 किलो कैलोरी पर जी रहे थे।
आज के मुकाबले तो बहुत कम है ये।
बहुत कम, इतनी कम ऊर्जा में ना बड़े शहर बन सकते थे, ना जटिल समाज। जिंदगी छोटे घुमंतु समूहों में ही कटती थी। ऊर्जा का कोई सरप्लस, अधिशेष था ही नहीं।
लेकिन फिर आग आई, वो पहला बड़ा बदलाव था शायद।
अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत।
हाँ, आग पहला अतिरिक्त दैहिक ऊर्जा स्रोत था। खाना पकाना, गर्मी, सुरक्षा, और फिर आई कृषि क्रांति।
जिसे हम अक्सर सिर्फ खेती की शुरुआत समझते हैं।
पर स्मिल के नजरिए से देखें तो ये ऊर्जा हासिल करने की एक बहुत बड़ी रणनीति थी, एक जगह पर ज्यादा बायोमास उगाना और उसे कंट्रोल करना।
और फिर आए जानवर, पालतू जानवर।
हाँ, बैल, घोड़े। सोचिए, एक बैल इंसान से 3-5 गुना ज्यादा ताकत लगा सकता है। इससे बड़े खेत जोतना, ज्यादा अनाज उगाना संभव हुआ।
तो पहली बार ऊर्जा अधिशेष मिला, जरूरत से ज्यादा ऊर्जा।
एग्जैक्टली, और यही अधिशेष शहरों, कारीगरों, शासकों यानी कि सभ्यता की नींव बना।
तो मांसपेशियों से शुरुआत हुई, फिर अगला युग कौन सा था? आपने कहा पूर्व औद्योगिक, प्राइम मूवर्स।
हाँ, दूसरा युग। ये वो दौर था जब इंसान ने, मतलब अपनी और जानवरों की ताकत के अलावा, प्रकृति की निर्जीव शक्तियों का इस्तेमाल सीखा। भाप इंजन से बहुत पहले की बात है ये।
अच्छा, जैसे कि?
जैसे हवा और पानी। यहाँ दो चीजें अहम हो जाती हैं, शक्ति यानी पावर, कितनी तेजी से ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, और शक्ति घनत्व यानी पावर डेंसिटी, एक जगह में कितनी शक्ति मिल सकती है।
इसके उदाहरण क्या थे उस जमाने में?
सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी की चक्कियां यानी पंचक्की और पवन चक्कियां, जो मध्ययुगीन यूरोप और चीन में खूब फैले।
हाँ, सुना है इनके बारे में।
एक अच्छी पंचक्की सोचिए, दर्जनों आदमियों के बराबर लगातार काम कर सकती थी। इन्होंने अनाज पीसने से लेकर धातु के काम, कपड़े बनाने तक कई चीजों को बदल दिया।
और कोयले का भी जिक्र था?
हाँ, कोयले का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, खासकर इंग्लैंड में चीजें गर्म करने, धातु गलाने में। पर अभी ये उतना एफिशिएंट नहीं था, ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा पर धीरे धीरे।
लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी, तीसरा युग, जीवाश्म ईंधन का युग, जिसे स्मिल, महान संक्रमण या द ग्रेट ट्रांजिशन कहते हैं।
बिल्कुल, ये तो मतलब क्वांटम लीप था। पहली बार इंसानियत हर साल सूरज से मिलने वाली ऊर्जा की सीमाओं से आजाद हुई।
हम लाखों साल पहले जमा हुई ऊर्जा इस्तेमाल करने लगे।
हाँ, कोयला, तेल, गैस, ये प्रकृति की लाखों साल की बचत थी जिसे हमने तेजी से खर्च करना शुरू किया।
और यहीं पर वो ऊर्जा घनत्व वाली बात फिर से जरूरी हो जाती है ना?
बिल्कुल, कोयले और तेल में लकड़ी के मुकाबले प्रति किलो कहीं ज्यादा ऊर्जा होती है। ये बहुत सघन, डेंस स्रोत थे।
और इस ऊर्जा को काम में बदलने के लिए आया स्टीम इंजन।
हाँ, जेम्स वॉट का बेहतर स्टीम इंजन। ये पहला ऐसा क्रांतिकारी प्राइम मूवर था जो कोयले की केमिकल एनर्जी को भरोसेमंद तरीके से मैकेनिकल काम में बदल सकता था। कहीं भी, कभी भी पानी के स्रोत के पास होना जरूरी नहीं था।
और इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा।
पूरी दुनिया बदल गई। कोयला और भाप ने मिलकर फैक्ट्रियां खड़ी की, बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात बना, रेलवे और स्टीमशिप ने दूरियां कम की, बाजार जोड़े, बड़े बड़े शहर बसाना मुमकिन हुआ,
क्योंकि अब खाना और सामान दूर से लाना आसान था।
बिल्कुल। फिर आया तेल और आंतरिक दहन इंजन यानी आईसी। ये स्टीम इंजन से हल्का और ज्यादा पावरफुल था, इसी से कारें बनी, हवाई जहाज उड़े।
और बिजली भी इसी दौर में आई।
हाँ, बिजली, जो खुद ऊर्जा स्रोत नहीं पर ऊर्जा का एक कमाल का वर्सटाइल वाहक कैरियर है, जिसे तब ज्यादातर कोयला जलाकर ही पैदा करते थे।
ये सब हमें ले आता है आज के युग में, चौथा युग, 20वीं सदी की उच्च ऊर्जा सभ्यता।
हाँ, वो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी पहचान है जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल, गैस का बेहिसाब विस्तार और उन पर हमारी गहरी, बहुत गहरी निर्भरता।
20वीं सदी में जनसंख्या, दौलत, टेक्नोलॉजी, सब में जो विस्फोट हुआ, वो इन्हीं ईंधनों की देन था।
सीधे तौर पर इसने आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया बनाई। यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं, एक तो हमारी ऊर्जा प्रणाली का विशाल स्केल और दूसरा हर चीज में छिपी सन्निहित ऊर्जा।
ये सन्निहित ऊर्जा क्या है, थोड़ा और समझाएंगे?
मतलब किसी भी चीज को बनाने, लाने, ले जाने, इस्तेमाल करने में जो कुल ऊर्जा लगती है। जैसे ये माइक ही ले लीजिए, इसे बनाने में प्लास्टिक जो तेल से बनता है, मेटल फैक्ट्री की बिजली, इसे यहाँ तक लाने वाले ट्रक का डीजल, ये सब इसकी सन्निहित ऊर्जा है।
वाह वाह, इस नजरिए से तो हर चीज ऊर्जा का ही रूप है।
लगभग हर चीज। आप आधुनिक खेती को देखिए, जो आज 8 अरब लोगों का पेट भर रही है। स्मिल कहते हैं कि ये असल में जीवाश्म ईंधन को भोजन में बदलने की प्रक्रिया है।
कैसे भला?
जो रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर हम डालते हैं, वो ज्यादातर हैबर बॉश प्रक्रिया से बनती है, जिसमें प्राकृतिक गैस लगती है। ट्रैक्टर, पंप, कीटनाशक, ट्रांसपोर्ट, सब जीवाश्म ईंधन पर चलते हैं।
सही बात है, हमारे शहर, गाड़ियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब इसी पर दिखे हैं।
हाँ, और स्मिल बताते हैं कि दुनिया की 80% से ज्यादा प्राइमरी एनर्जी आज भी कोयला, तेल और गैस से ही आती है।
तो भविष्य के बारे में स्मिल क्या कहते हैं, खासकर जब हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की बात करते हैं?
देखिए, स्मिल यहाँ बहुत यथार्थवादी हैं। कुछ लोग उन्हें निराशावादी भी कह सकते हैं। वो हमारी जीवाश्म ईंधन पर गहरी निर्भरता को देखते हुए उनसे जल्दी छुटकारा पाने की बात पर सवाल उठाते हैं।
वो रिन्यूएबल्स की सीमाओं की बात करते हैं?
हाँ, जैसे उनका कम शक्ति घनत्व, पावर डेंसिटी, मतलब उतनी ही जगह में कोयला या गैस प्लांट से काफी कम ऊर्जा मिलना, उनका रुक रुक कर चलना, हवा हमेशा नहीं चलती, सूरज रात में नहीं चमकता, और उन्हें बड़े पैमाने पर लगाने के लिए कितनी जमीन और कितने मटेरियल जैसे स्टील, कंक्रीट, रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए।
तो उनका मुख्य तर्क क्या है इस धीमी गति को लेकर?
उनका तर्क इतिहास से आता है। वो दिखाते हैं कि पिछले सभी बड़े ऊर्जा संक्रमण लकड़ी से कोयले पर या कोयले से तेल पर बहुत धीमे हुए हैं। इनमें दशकों, यहाँ तक कि सदियां लगी हैं।
कोई भी बड़ा ऊर्जा स्रोत एकदम से गायब नहीं हुआ?
बिल्कुल नहीं, सब साथ साथ चलते रहे, धीरे धीरे हिस्सा बदला। तो ये उम्मीद करना कि हम बस 20-30 साल में जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह रिन्यूएबल से बदल देंगे, स्मिल के हिसाब से इतिहास को अनदेखा करना है।
ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नहीं होगा, पर
वो धीमा और मुश्किल होगा। हमें यथार्थवादी होना पड़ेगा।
तो इस पूरी किताब से मुख्य संदेश क्या निकलते हैं?
क्या है वो बड़ी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए?
कई हैं। सबसे पहला और बुनियादी, ऊर्जा ही मास्टर रिसोर्स है। ये सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है।
दूसरा, जिसकी हमने अभी बात की, ऊर्जा संक्रमणों की धीमी प्रकृति। बदलाव होते हैं, पर धीरे धीरे। रातों रात क्रांति की उम्मीद करना ठीक नहीं।
तीसरा, ऊर्जा घनत्व और सामाजिक जटिलता का सीधा रिश्ता। जैसे जैसे हमने ज्यादा घनी ऊर्जा इस्तेमाल की, समाज ज्यादा जटिल और सक्षम होते गए।
चौथा, जीवाश्मीय ईंधन पर हमारी आज की अभूतपूर्व निर्भरता। स्मिल के आंकड़े हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इन ईंधनों पर कितने ज्यादा टिके हुए हैं। भारत में ही देखिए, खेती हो, ट्रांसपोर्ट हो, बिजली हो।
हाँ, ये निर्भरता समझना बहुत जरूरी है अगर हम डीकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं।
और पांचवा, जो थोड़ा दार्शनिक है, इतिहास सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं बल्कि भौतिकी के नियमों से भी बनता है। थर्मोडायनामिक्स के नियम अटल है। कहता है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, जैसे ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी, तो अक्सर कुल ऊर्जा की खपत कम होने के बजाय बढ़ जाती है।
अरे, ऐसा क्यों?
क्योंकि चीज सस्ती या बेहतर हो जाती है तो हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, या जो पैसा बचता है उससे कुछ और खरीदते या करते हैं जिसमें फिर ऊर्जा लगती है। तो एफिशिएंसी जरूरी है, पर वो अपने आप में खपत कम होने की गारंटी नहीं है।
कमाल है। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां जरूर होंगी जो इन विचारों को समेटती हूँ, कुछ यादगार कोट्स?
हाँ, स्मिल की भाषा बहुत सटीक होती है। चलिए कुछ मुख्य विचारों को उनके शब्दों में देखते हैं, या उनके सार को।
पहला, सभ्यता का इतिहास ऊर्जा रूपांतरण का इतिहास है। हर बड़ी सामाजिक छलांग ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने के नए तरीके से पहले आई है, और हर समाज अंततः उस शक्ति से सीमित होता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। मतलब ऊर्जा ही तरक्की भी है और सीमा भी।
दूसरा, ऊर्जा संक्रमण धीमे, लंबे और एक दूसरे से जुड़े मामले होते हैं। कुछ ही दशकों में दुनिया के जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल में बदलने की उम्मीद करना पिछले 200 साल के ऊर्जा इतिहास के सबक को नजरअंदाज करना है। ये हमें यथार्थवाद और धैर्य सिखाता है।
तीसरा, ये वाला मुझे बहुत दमदार लगा। आधुनिक कृषि बस जीवाश्म ईंधन को भोजन में बदलने की प्रक्रिया है। हमारी पूरी खाद्य आपूर्ति उर्वरक के लिए प्राकृतिक गैस और मशीनरी के लिए डीजल की नींव पर टिकी है।
कितना सीधा कनेक्शन है।
हाँ।
और चौथा, हम एक जीवाश्म ईंधन वाली सभ्यता है। हमारी तरक्की, जीवन की गुणवत्ता, समृद्धि सब प्राचीन कार्बन के जलने पर टिकी है। इस गहरी निर्भरता को समझना ही एक अलग भविष्य की ओर पहला कदम है।
मतलब पहले समस्या को मानो, तभी समाधान निकलेगा।
सबसे बड़ा असर तो सोच पर पड़ सकता है। दुनिया को सन्निहित ऊर्जा के चश्मे से देखना। जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं, तो सोचें कि इसमें कितनी ऊर्जा लगी होगी।
जैसे एक प्लास्टिक की बोतल या एक हवाई यात्रा।
बिल्कुल। इससे शायद हम चीजों की ज्यादा कद्र करें, कम बर्बादी करें, अपनी लाइफस्टाइल की असली लागत समझें।
और दूसरा फायदा, शायद खबरों और बहसों को बेहतर समझ पाएं।
हाँ बिल्कुल, जब कोई तुरंत समाधान या 100% रिन्यूएबल कल ही जैसी बातें हो तो हम स्मिल के नजरिए से सवाल पूछ सकते हैं। स्केल क्या है, पावर डेंसिटी क्या है, मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या ये मुमकिन है? ये हमें मतलब ज्यादा समझदार पाठक या नागरिक बनाता है।
नहीं तो एकदम हवा में उड़ने की जरूरत है, नहीं पूरी तरह निराश होने की।
सही कहा, एक व्यावहारिक नजरिया मिलता है। और जो लोग बिजनेस, इंजीनियरिंग या पॉलिसी में हैं, उनके लिए तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी किताब है।
हाँ, और ये समझने में भी मदद करती है कि क्यों दुनिया में ऊर्जा को लेकर इतना तनाव रहता है ना, जियोपॉलिटिक्स।
निश्चित रूप से ऊर्जा सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि ताकत और राजनीति का भी केंद्र है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हमारी ये जो आधुनिक जटिल दुनिया है ही कितनी असाधारण और कितनी नाजुक है। ये पूरी तरह पिछले बस 200 सालों के जीवाश्म ईंधन के बोनस पर बनी है। ये हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला, इस सच्चाई का सामना करना जरूरी है।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात ये रही कि हम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, हम प्रकृति के, खासकर ऊर्जा के नियमों से बंधे हैं। इतिहास सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं चलता, भौतिकी के नियम भी कहानी लिखते हैं।
और यही हमें उस अंतिम सवाल पर लाता है, स्मिल का जो ये यथार्थवाद है जो शायद हमें फौरी खुशी ना दे, वो हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार करता है।
क्या हम इतिहास के धीमे और मुश्किल सबकों से सीखने को तैयार हैं, भले ही वो आसान और तेज समाधानों के वादों जितने लुभावने ना हो? ये सवाल हम श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडिया सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।